नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा के लिए गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का आज दौरा किया। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कल रात हुए आकस्मिक विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने कल शाम पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर गाँव से नूर आलम नाम के व्यक्ति को दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के लिए सिलसिले में हिरासत में लिया। सिक्किम में पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव CS राव ने कहा कि केंद्र सरकार के युद्ध क्षेत्र पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत रणनीतिक स्थल डोकलाम और चोला इस वर्ष 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोले जा सकते हैं। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 390 दर्ज किया गया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा के लिए गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का आज दौरा किया। प्रधानमंत्री सुबह एंट्रोली में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन पहुंचे। श्री मोदी ने अधिकारियों से बातचीत की और कार्यों की समीक्षा की। भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक यह रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है। इसमें गुजरात और दादरा और नगर हवेली में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर शामिल है। ये कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई सहित प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित इस परियोजना में 465 किलोमीटर मार्ग पुलों पर आधारित है। इससे न्यूनतम व्यवधान और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब तक 326 किलोमीटर दूरी के पुलों का काम पूरा हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुलों का निर्माण हो चुका है। यह बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को कम कर सिर्फ 2 घंटे का कर देगी। इस परियोजना से पूरे कॉरिडोर पर व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है। लगभग 47 किलोमीटर लंबा सूरत बिलिमोरा खंड निर्माण के अंतिम चरण में है। इसमें सिविल कार्य और ट्रैक बिछाने का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है। सूरत स्टेशन का डिजाइन शहर के विश्व प्रसिद्ध हीरा उद्योग से प्रेरित है। स्टेशन को यात्रियों के आराम पर विशेष ध्यान देते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें विशाल प्रतीक्षालय, शौचालय और खुदरा दुकानें हैं। ये सूरत मेट्रो, सिटी बसों और भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। भारत और पराग्वे ने द्वीपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक स्तरों पर समन्वित प्रयासों के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। असुनसियन में आयोजित संयुक्त आयुक्त तंत्र की पहली बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक लाभ के लिए सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और द्वीपक्षीय समन्वय तंत्रों को मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की। बैठक की अध्यक्षता पराग्वे के उपविदेश मंत्री राजदूत विक्टर वुर्दुन और विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व पेरियासामी कुमारन ने कल की। दोनों देशों ने द्वीपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा की। दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ द्वीपक्षीय समझौतों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के महत्व पर सहमत हुए। प्रतिनिधिमंडलों ने उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद को गहन बनाने, आधिकारिक यात्राओं और नियमित परामर्शों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुवर्ती कार्रवाई करने, नई पहलों का मूल्यांकन करने और मौजूदा उपायों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, व्यवसाय, फार्मास्यूटिकल्स, आईसीटी, जैव ईंधन और हल्के विनिर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्वीपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। पराग्वे पक्ष ने पराग्वे में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों पक्षों ने देश में भारतीय व्यवसायों की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए कंसुलरी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के व्यवहारिक उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली स्थित संसद परिसर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी जयंती 2021 से देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने देशभक्ति की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जो पीढ़ियों तक जलती रहेगी। उन्होंने कहा कि धरती आबा और अन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत सदैव अमर रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रहित, आदिवासी उत्थान और स्वाभिमान के लिए बिरसा मुंडा का अद्वितीय संघर्ष सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कल रात एक आकस्मिक विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर संभाग मामलों के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने बताया कि इस घटना में 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने कल शाम पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर गांव से नूर आलम नाम के व्यक्ति को दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में हिरासत में लिया। नूर आलम उत्तरी दिनाजपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है और वो फरीदाबाद स्थित अलफला विश्वविद्यालय का छात्र है। पुलिस के अनुसार वह विवाह समारोह में शामिल होने के लिए इस गांव में आया हुआ था। किफायती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण पहल ने आज 10 वर्ष पूरे कर लिए। नई दिल्ली में अमृत की 10वीं वर्षगांठ समारोह में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस कार्यक्रम ने पिछले 10 वर्षों में मरीजों को लगभग 8,500 करोड़ रुपए बचाने में मदद की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 255 अमृत फार्मेसी है जो दवाओं, प्रत्यारोपणों, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स और अन्य उपभोग्य सामग्रिय सहित 6,500 से अधिक उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य पर 50% तक की छूट प्रदान करती है। सिक्किम में पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव CS राव ने कहा कि केंद्र सरकार के युद्ध क्षेत्र पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत रणनीतिक स्थल डोकलाम और चोला इस वर्ष 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोले जा सकते हैं। पहले इन दोनों रणनीतिक स्थलों का उद्घाटन 27 सितंबर को होना था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने नई समय सीमा तय की है। गैंगटॉक में संवाददाताओं से बातचीत में श्री राव ने कहा कि सभी लंबित कार्यों में अब तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर बुनियादी ढांचे का काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। डोकलाम लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राजधानी गैंगटॉक से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। चोला को मुख्यतः 1967 में भारत चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के लिए याद किया जाता है। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकाल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक शीत लहर चलने की संभावना है। इस बीच दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 390 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अधिकांश इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। आनंद विहार में AQI का स्तर 428, नरेला में 424, पंजाबी बाग में 408 और IGI हवाई अड्डे पर 351 दर्ज किया गया है। खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRP के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।